हमारे बीच आदरणीय मोहन भाई हैं, सभी जिले निवासियों की तरफ से आपका हम एक हाथ की ताली से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। आदरणीय मोहन भाई जी को हम सब भली भांति पहचानते हैं। आपने इंजीनियर साइंटिस्ट विंग में विभिन्न कार्यक्रम एक नेशनल कोऑर्डिनेटर के हिसाब से बनवाकर देश विदेश में बाप दादा के नाम की प्रतिष्ठा की है। बहुत सारे अवार्ड्स आपको उस हिसाब से पर्यावरण श्री वगैरह मिले हुए हैं। बचपन से ही बाबा की गोद में साकार मामा बाबा की पालना में आप पले हैं। थोड़ा सा समय आपने ONGC में जियोलॉजिस्ट के हिसाब से लौकिक जॉब भी की, लेकिन अर्ली रिटायरमेंट लेकर के बाबा की ज्ञान सरोवर जब से बना है, एकेडमी ऑफिस को भी आप साथ साथ सुचारू संभाल रहे हैं। आज आपका विषय है मन जीते जगत जीत। हमारी से ही अभिमानी स्थिति को ज्यादा सक्षम बनाने के लिए हम कैसे मन को जीत करके अपनी स्टेबिलिटी को, अचल अडोल स्थिति को बनाएं, आप इस विषय पर हमें मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय मोहन भाई,
ओम शांति। आप सब मेरे साथ मिलकर के एक बार ऐसे ओम शांति बोलेंगे जैसे हमने लोगों ने सुना यज्ञ में बोला करते थे। ओ शांति एक ऐसा महामंत्र है जिसके अंदर बाकी सब भी आत्मा के गुण आ जाते हैं। अक्सर करके कई बार दादी जानकी कहते हैं कि हमें केवल ओम शांति नहीं बोलना है, ओम आनंद, ओम पवित्रता, ओम प्रेम, ओम शक्ति, ओम सुख, ओम ज्ञान, जो आत्मा के साथ गुण हैं, उन सब को भी स्मृति में लाते रहने हैं। भले निमित्त हम सब लोग ओम शांति बोलते हैं, लेकिन इसके अंदर सभी आ जाते हैं। आज की मुरली सबने सुनी क्या था मुरली का सार? नहीं, वो भी सुदर्शन चक्र भी क्यों चलाना चाहिए? सदा रिफ्रेश रहने के लिए। कोई भी बाबा की मुरली होती है ना, हर मुरली की तह में जाकर के उसकी गुह्यता को जानने का प्रयास अगर होता है तो बहुत आनंद की अनुभूति होती है। तो बाबा ने क्या कहा? हाँ, लौकिक रीति से रिफ्रेश कैसे रहते हैं? कैसे रहते हैं? ये जो चल रहा है ना पंखा, से रिफ्रेश क्यों रहते हैं? पंखा से मतलब बाबा के जमाने में तो तब पंखा भी एक नया ही था, क्योंकि जैसे आज बता रहे थे बहन जी क्लास में, तब तो आबू में सर्दी काफी होती थी, पंखे भी नहीं होते थे, फिर भी पंखा क्यों रिफ्रेश करता है? क्यों करता है? क्योंकि बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना, अगर उस टेम्परेचर से ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है तब भी रिफ्रेश नहीं रहते हैं, उससे बहुत कम होता है तो भी रिफ्रेश नहीं रहते हैं। उसके आसपास अगर टेम्परेचर होता है तो आदमी को रिफ्रेश का अनुभव होता है। तो पंखा क्या है? हवा देता है थोड़ा बॉडी गर्मी के दिनों में, एसी वगैरह से भी क्यों होता है, पंखे का काम एसी करता है कि उस बाहर के गर्म टेम्परेचर को और मतलब कम करके नियर टू बॉडी टेम्परेचर लाते हैं। तो ये तो शरीर की बात रही। ऐसी आत्मा के भी रिफ्रेश, शरीर रिफ्रेश होता है उससे आत्मा हो जाए, वो एक निर्भरता हुई बाह्य पर। लेकिन आत्मा सदा रिफ्रेश रहे तो आत्मा का टेम्परेचर किन गुणों पर ज्यादातर रहता है आधारित, जो आत्मा के अभी 7 गुण सुने बाबा बताता है ना, हम सब पुराने बच्चे बाबा के बैठे हैं, सुख शांति आनंद पवित्रता आदि आदि। और जब इन गुणों से हम डेविएट कर जाते हैं, इन गुणों से थोड़ा दूर चले जाते हैं, तो वो आत्मा की रिफ्रेशनेस भी कम हो जाती है। आत्मा भी ऐसा अनुभव करती है जैसे कि थोड़ा बहुत असमंजस का, क्योंकि ज्ञान तो बुद्धि में है, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, लेकिन जानते हुए भी अगर ऐसी कोई बात मन वचन या कर्म में हो जाती है जो हम जानते हैं ये नहीं होनी चाहिए थी और हो जाती है, तो क्या होता है, आत्मा को गिल्टी कॉन्शियस का अनुभव होता है, थोड़ा सा आत्मा को अपराध बोध का अनुभव होता है, देखो बाबा ने तो ये कहा है ये नहीं, गुस्सा आ गया आपने बोल दिया। उसके बाद जब थोड़ा सा बुद्धि नॉर्मल की तरफ आती है तो क्रोध का जैसे आरंभ हमेशा आवेश से होता है और उसका अंत पश्चाताप से होता है। इसीलिए जब भी हम डेविएट करते हैं तो बाद में हमें कुछ न कुछ पश्चाताप का अनुभव अवश्य होता है। इसीलिए पंखे का आज बाबा ने बोला ना, तो पंखा क्या याद दिलाता है, सुदर्शन चक्र की। तो पंखे को देख के क्या विशेषता याद आती है, कोई भी बाबा चीज स्थूल देता है ना, उस पर विचार सागर मंथन हो जाना चाहिए। देखो पंखा घूम रहा है ना, कैसा घूम रहा है, हा? चक्कर कौन सी डायरेक्शन में घूम रहा है, हा? एक दिशा तो है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, नहीं कहां क्लॉकवाइज है, ये तो देखिए। हर चीज को ये यू घूम रहा है, मतलब सामने ना, मतलब उसको सोचिए, अगर हम इसे ऊपर से देख रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज है, नीचे से देख रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। भाव क्या हुआ कि जैसे पंखा, तो बाबा ने कहा है हमारी अगर स्थिति ऊंची होगी तो हम सदा कैसे रहेंगे, समय के साथ साथ चलेंगे, यानी ड्रामा के पट्टे पर खड़े रहेंगे, फिर हमें कभी ये नहीं होगा ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए था, क्यों, क्योंकि समय यानी ड्रामा के साथ साथ, लेकिन प्रोवाइडेड हमारी स्थिति ऊंची हो। और अगर हम नीचे सामान्य स्थिति से देखेंगे तो क्या होगा, ड्रामा, क्योंकि यही ड्रामा है जो महान भी बना देता है और यही ड्रामा का ज्ञान हमें नीचे भी ले जाता है। अरे भाई जब ड्रामा में निश्चित ही है तो क्या कर सकते हैं, पुरुषार्थ कल्प पहले किया होगा तो कर लेंगे, जो पद पाना होगा तो पा लेंगे जो पा लिया, अक्सर करके ये है ड्रामा का उल्टा ज्ञान, जो कि हम रिवर्स डायरेक्शन में नीची स्थिति से जब हम देखते हैं। तो सदर्शन चक्र को फिराना है बुद्धि में, हमेशा अपनी मानसिक स्थिति को ऊंचा रख के ड्रामा, बाबा कहते हैं समय भी हमारी रचना है, हम रचयिता हैं, हम समय से महान हैं। दुनिया कहती है समय बहुत समय, वास्तव में टाइम मैनेजमेंट का भी कोर्स होता है हमारे मैनेजमेंट में, जब हम एमटेक में थे तो उस समय ये बताया गया। तो टाइम मैनेजमेंट कोई भी दुनिया में नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि टाइम तो फिक्स्ड गति से चलता है, ना वो स्लो चल सकता है ना फास्ट सकता है। टाइम की क्या स्पीड है, टाइम मतलब 60 सेकंड पर मिनट या 60 मिनट्स पर आवर, ये टाइम की स्पीड है, ना इसे हम 59 कर सकते हैं ना 61 टाइम। लेकिन टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ कि टू मैनेज अवर सेल्फ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी हम अपने को मैनेज करें समय के विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नहीं तो टाइम तो आदि से, सतयुग के आदि से लेकर अंत तक अभी तक उसी गति से ही चल रहा है। वही दिन रात का, वही 24 घंटे का दिन रात, वही सब कुछ चीजें हो रहे हैं। तो भाव क्या है कि जो भी बाबा की जब मुरली सुने, कुछ समय हम मानो पंखे का ये स्वदर्शन चक्र दिया, फिर बाबा ने कहा इससे रिफ्रेश रहेंगे। जब हम ऊंची स्थिति होगी तो रिफ्रेश रहेंगे ही, और इससे प्राप्ति क्या होगी, सुदर्शन चक्र फिरता रहेगा तो नेक्स्ट क्या बताया बाबा ने, चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। चक्रवर्ती पुराने जमाने में ना कैसे बना करते थे, कोई राजा तो बहुत हुआ करते थे, कोई राजा को जैसे श्री रामचंद्र जी को संकल्प हुआ भाई चक्रवर्ती महाराजा बनने का, तो क्या विधि होती थी, अश्वमेघ, पूरा नाम बोलो जरा, बड़ा लंबा चौड़ा है ना, राजस्व से शुरू होता है ना, अब बोलो राजस्व अश्वमेघ, मतलब मैं बोलता हूँ उसमें गलती हो तो ऐड करना, रुद्र अविनाशी गीता ज्ञान यज्ञ, अब इसमें कुछ छूट गया हो तो बताना, यही है ना, राजस्व अश्वमेघ रुद्र अविनाशी गीता ज्ञान यज्ञ, ओके। तो वो यज्ञ रचा करते थे राजा लोग, श्री रामचंद्र जी ने भी रचा था जैसा इतिहास में आता है, और वो यज्ञ रच के क्या करा करते थे, घोड़ा छोड़ते थे, और घोड़े के तख्ती लगी हुई होती थी कि भाई जो भी इन राजा की अधीनता स्वीकार करता है वो घोड़े को जाने दे, और जो अधीनता स्वीकार नहीं करता है वो युद्ध करे, और उस घोड़े के पीछे पीछे राजा की सेना चला करती थी। हमारा भी तो ये अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ है, हम लोग भी तो चक्रवर्ती राजा महाराजा महारानी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्या भाव है इसका, ये तो बाबा ने बताया राजस्व अश्व, कैसे ये हमारा अश्व है, कभी मन के लिए बाबा बोलते हैं, आज का विषय भी ये है मन जीते जगत जीत, और मन के ही लिए कहा है, क्या कहा है, नहीं ये मन तो भक्ति मार्ग में मन बड़ा चंचल है, भाग जाता है, मन तो घोड़े की तरह है, मन की तुलना घोड़े से ही की है, और मन बड़ा, इसीलिए पूरा सबका आधार ही है मन के हारे हार है मन के जीते जीत, मन चंगा तो कठौती में गंगा, गीता में भी क्या कहा है, मन मना भाव, तन मना भाव या धन मना भाव या संबंध मना भाव नहीं, मन मना भाव, सारा आधार ही मन के ऊपर है। और ये अश्वमेघ यज्ञ का मतलब ही ये है कि मन जो घोड़ा है उसको वश में करके चलना, उसके पीछे पीछे हम लोग सब अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं, हमने भी ये घोड़ा छोड़ा हुआ है, और हमारे पीछे पीछे कौन सी सेना है, दिव्य गुणों की, जो बाबा ने दिव्य गुण बताए हैं, जो आत्मा के ये सात गुण हैं, दिव्य शक्तियां हैं, ये सब हमारे पीछे पीछे हमारी सेना है, और सामने की कौन सी सेना घोड़ा रोकने के लिए तैयार खड़ी है, माया रावण की, काम क्रोध लोभ जितनी भी निगेटिविटीज हैं, वो सेना, उस सेना के साथ इस सेना का युद्ध हमारा चलता रहता है। और जब भी हम विजय का अनुभव करते हैं हमारा ये मन रूपी घोड़ा आगे बढ़ता चला जाता है, और जब कभी ऐसा अनुभव होता है कि अभी वो सेना भारी पड़ रही है तो हमारी खुशी भी कम हो जाती है, क्योंकि विजय में खुशी होती है, जहां विजय नहीं होती है वहां सब जानते हैं क्या होता है। इसीलिए ये आज बाबा ने जो अश्वमेघ घोड़े का बोला है ये देखते चलना है, और सारा आधार किस पर है, ये सारा आधार मन के ऊपर है। यहाँ तो डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, हमारा एक कॉन्शियस माइंड होता है चेतन मन, और जो अर्ध चेतन मन होता है, सब कॉन्शियस माइंड होता है, वो बड़ा पावरफुल है अर्ध चेतन मन। अगर 10% हमारा कॉन्शियस माइंड है चेतन मन, तो 90% 9 गुना ज्यादा शक्तिशाली हमारा अर्ध चेतन मन है, और इसीलिए हम सब वो ही अपने को ऑटो सजेशन दे दे करके अपने को उस चेतन मन को अचेतन मन को शक्तिशाली बनाते हैं। और बस जितना जितना हमारा ये अचेतन मन शक्तिशाली होता जाता है तो हम मन जीते जगत जीत बनते चले जाते हैं। शुरुआत ही हमारी पहले दिन से ये होती है जब करते हैं, भाई मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, शांति के सागर पिता की संतान हूँ, आदि आदि। तो ये हम अपने अचेतन मन के अंदर ये डाल रहे हैं धीरे 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 धीरे। और जितना जितना ये पढ़ता चला जाता है उतना उतना मन शक्तिशाली होता चला जाता है और अंत में ये ही काम आएगा। इस कारण से एक तो ये हम देखते चले कि मन हमारा किस प्रकार से शक्तिशाली होता चला जाए। और हम सबके सामने रोल मॉडल कौन है? कौन है रोल मॉडल? एक ही आत्मा अभी तक रोल मॉडल है। कौन? ब्रह्मा बाबा। जो मन जीते जगत जीत बन गया। जगत जीत का तो है ये नारायण नंबर वन, कृष्ण नंबर वन, और मन जीतने के कारण। तो मैं यहाँ कुछ वो शेयर आपके सामने, क्योंकि बाबा के साथ रहने का मुझे बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ 6-7 साल। और इतना ही नहीं, जब बाबा अपना मन लगभग पूर्ण रीति से जीत चुके थे 17 और 18 जनवरी 1969, जब बाबा लगभग कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर चुके थे, उन 2 दिनों में हम यहीं थे और हमने जो बाबा की कर्मातीत अवस्था देखी, मन जीते जगत जीत, वो विशेष आज आपके सम्मुख हम शेयर करना चाहते हैं। क्योंकि हम सभी का लक्ष्य ही वही है कि हम सबको भी ऐसा जगत जीत बनना है। क्योंकि जो गायन है ना, अंत मते सो गति का गायन है। सारा पुरुषार्थ हमारा इसी के लिए हो रहा है, उस एक सेकंड के लिए जब हमारे प्राण स्तन से निकलेंगे और उस समय हमारी जो मानसिक स्थिति होगी, बस उसी आधार पर हमारे पुनर्जन्म होंगे, उसी आधार पर हमारी सारी आगे की जीवन चरित्र, पूरा जीवन लीला होगी। सतयुग के अनेक अनेक जन्मों का आधार इस संगम युग का हमारा अंतिम वो क्षण है जिस क्षण हमारे प्राण तन से निकले। इसीलिए तो हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं कि जितना अभ्यास हमें होता जाएगा वैसा ही अंत में हमारी स्थिति होगी। और हमें अंतिम दिन देखने के बाबा के सौभाग्य मिला, इस कारण से उसको हम देख देख के प्रैक्टिकल में लाते जाएंगे तो हम भी वैसी ही स्थिति प्राप्त कर लेंगे। तो वैसे भी गवर्नमेंट में भी क्या होता है, हाँ, जॉब करते हैं ना, तो लास्ट में है, एक होता है LPC, लास्ट पे सर्टिफिकेट, उसके आधार पर ही है जितना जिंदगी भर जिएगा वो पेंशन और ग्रेजुएटी और जो कुछ भी मिलेगा उसके लास्ट पे, जो उसने लास्ट पे ड्राइव की है उसके आधार पर ही सारा कैलकुलेशन उसका होता है। तो अपना भी यही है कि जितना अंतिम क्षण हमारे, और उसी के लिए बाबा ने लास्ट लाइन भी के, कोई हंसी में बता रहा था देखो मुरली रोज सुनने का फायदा क्या है, सुना होगा, पहले शुरुआत बाबा की किस शब्दों से होती है? मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, और जो भी बाबा की हेडलाइन होती है, और अंत क्या होता है? मीठे मीठे बच्चे, चिटचैट में, यानी कि हम डबल मीठे तो मुरली सुनते सुनते ही बन जाते हैं, किसी ने हंसी में बताया। और आज की मुरली में अंतिम वरदान के बाद क्या होता है? स्लोगन। तो जो किनारे, पता है ना, किनारे छोड़ेंगे तो फिर कर्मातीत बन जाएंगे, तो बाद-बाद तो कर्मातीत बना। तो इस कारण से किस प्रकार से बाबा ने मन जीता, हम अब उस शेयर करने पर आते हैं। तो बाबा से जब हम लगभग पहली बार मिले थे, क्योंकि बाबा भी साधारण गृहस्थी था, हीरे जवाहरात का व्यापारी, पत्नी, 5 बच्चे, धंधा पूरा सारा बिल्कुल लौकिक रीति से जैसे मनुष्य होते हैं। लेकिन बाबा को जब से ये साक्षात्कार हुआ, कौन सा वाला? विनाश के बाद, वो कि ऊपर से स्टार आ रहे हैं, कोई आके नीचे राजा बन जा रहा है, कोई राजकुमारी, कोई महाराजा, लाइक दैट। तो बस बाबा जब विनाश का दृश्य देख रहा था तो बाबा की आंख से जैसे आंसू निकल रहे थे, बस गीता प्रसिद्ध अर्जुन की तरह, हे प्रभु बस बस कीजिए प्रभु, मुझे अपना मोहनी रूप दिखाइए, जो गीता अर्जुन की तरह। और फिर बाबा ने जब ये दृश्य दिखाया कि सतयुगी दुनिया है, बहुत बढ़िया है सब चीज, प्रकृति का मौसम, अच्छे अच्छे बच्चे, राजकुमार राजकुमारी, ऊपर से आत्माएं आ रही हैं, तो बाबा देखने में इतना तल्लीन हो गया, खुश हो गया, और बस भान ही नहीं रहा बाबा को। और फिर बाबा के कान में आवाज आई, कौन सी? तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है, तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है। और जब से बाबा के कान में वो आवाज आई, बाबा की तंद्रा टूटी। तो मैं कैसे बनाऊंगा, कौन था, किसकी आवाज थी? हम अपने से देखें, जब से हम ज्ञान में आए हैं तो वो तो बाबा को सुनाई पड़ा, लेकिन बाबा ने हमें भी तो सबको कहा है तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है, तुम ही उस दुनिया के अधिकारी हो। हम सभी जो यहाँ बैठे हैं बना भी रहे हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो क्या बाबा को बार बार बाबा की तरह मेरे ध्यान में ये रहता है, मुझे ऐसी सतयुगी दुनिया बनानी है? फर्स्ट पॉइंट, जैसे बाबा को। और बाबा को कैसे पता चलता था कि मैं संपूर्णता की ओर बढ़ रहा हूँ? आप सबने सुना है, जब गुलजार दादी छोटे थे, एक बार ध्यान में गए तो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को देखा। तब तक सूक्ष्म वतन का पार्ट क्लियर नहीं था, और सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। वो नीचे आई तो मम्मा से कहा, मम्मा मैंने बाबा को वहां भी देखा, ऐसे ही बाबा थे वो। वो कौन थे? मम्मा को भी नहीं मालूम था। मम्मा ने कहा बाबा से पूछो। आप सबने सुना होगा, बाबा से पूछा तो बाबा को भी नहीं मालूम था। बाबा ने कहा अच्छा, अगली बार जब तुम ध्यान में जाओ तो उनसे ही पूछना कि आप कौन है। तो जब अगली बार गुलजार दादी, 9-10 साल की उम्र थी दादी की, तो जब गई तो उनसे पूछा तो आप कौन है, तो क्या बोला उन्होंने, मैं उस ब्रह्मा का जो तुम्हारे साथ बाबा रहता है उसका संपूर्ण स्वरूप, उस ब्रह्मा को भी मेरे समान बनना है। तो वो आई और बताया जब बाबा को, बस बाबा का जीवन उस दिन से और परिवर्तन हो गया। बच्ची क्या, कैसे थे वो बाबा? बाबा शक्ल सूरत तो आपकी तरह ही थी, लेकिन बड़ा तेज था उनके, उनकी आंखों में बहुत चमक थी और एकदम इतना तेज। और जब जब वो जाती थी बाबा को देखती थी, बाबा उनका चलना बड़ा दिव्य है, धीरे धीरे चल रहे हैं, उनका बोलना आवाज नहीं निकलती, लेकिन सूक्ष्म वतन में लिप मूवमेंट से पता चल जाता है क्या आवाज है, जैसे कि संदेशियां बताते हैं। तो वो जो पार्ट खोला, तब से बाबा को ये हो गया कि मुझे वैसा व्यक्त फरिश्ता बनना है। और बाबा का जीवन बिल्कुल वैसा, पहले का तो हमें मालूम नहीं, लेकिन 1962 से लेकर 69 तक का कई बार बाबा के साथ रहने का मौका मिला, तो इसीलिए उसके आधार पर हम आपको बताते हैं कि बाबा का जीवन, पहले तो हमें 62 में बिल्कुल साधारण जैसा लगता था। बाबा के पास आते थे, बाबा मिलते थे, और बाबा का मिलने का ढंग, जैसे फोटो भी आपने बाहर देखा है ना लगा हुआ, कौन सा फोटो लगा है? बस बाबा का, आओ आओ बच्चे, आओ आओ मीठे बच्चे, आओ, ऐसे बाबा हाथ फैला देते थे। और इतना मैग्नेटिक पुल था बाबा में कि हम सब बाबा की भाव में खींच जाते थे। क्यों? क्योंकि बाबा ने ये पुरुषार्थ बहुत पक्का करा था, पहला कि भाई कौन सा, हाँ लिख लिख के भी, वो आप सबने सुनाई है, 2 डायरियां हैं, मैं आत्मा हूँ, और केवल लिख के पक्का ही नहीं किया, जैसे ही बाबा दृष्टि देते थे हम लोग अशरीरी हो जाते थे, विदेही हो जाते थे। फिर क्या होता था, बाबा की भाव में फिर बाबा ऐसे 25-30 सेकंड बाद, आधा मिनट बाद ऐसे थपथपाता था यूं सिर पे, हाँ बच्चे आओ आओ नीचे। कोई ध्यान में कोई चले नहीं जाते थे, साक्षात्कार में नहीं, लेकिन ऐसी विदेही स्थिति का अनुभव होता था। फिर बाबा जब ऐसे थपथपाता था तो टोली खिलाता था, हालचाल पूछता था, आदि आदि। तो हम अपने को ये चेक करते चले कि हम भी जिनके भी संपर्क में आते हैं, लौकिक हैं अलौकिक हैं कोई भी, तो जिनसे भी हमारा व्यवहार होता है, दृष्टि देते हैं, क्या हम उन्हें भी विदेही बना देते हैं या उन्हें देहभान में ले आते हैं। तो जैसी हमारी दृष्टि वृत्ति होगी वैसा ही सामने वाली आत्मा उसका अनुभव करेगी। इस कारण से एक तो बाबा ने ये चूंकि लिख करके पक्का किया था, बहुत बहुत लिख करके, और इसी रीति से बाबा ने जो अनुभव किया तो हर चीज में हम चेक करते चले, भले लिख के हमने पक्का नहीं किया हो या तो लिख के करें, जो भी विधि अपनाएं, लेकिन एंड टारगेट ये होना चाहिए कि जिन आत्माओं के भी को भी दृष्टि दे, जिनके भी संबंध संपर्क में आए, हमारा ऑरा इतना शक्तिशाली हो जाए, पावरफुल हो जाए कि हमारे ऑरा के अंदर जो कोई भी आए वो यही अनुभव करे, जो हमारे मन में चल रहा है उसके मन में भी वही संकल्प होगा, यह है मन जीते जगत जीत का अनुभव। इसीलिए बाबा के मन में एकदम यही होता था, हाँ ये आत्मा, इस आत्मा को मैं सकाश दे रहा हूँ, इस आत्मा से मिल रहा हूँ। ये एक दूसरा अनुभव साथ साथ बाबा के। और क्या होता था, पहले बाबा से मिलते थे तो बाबा काफी टाइम देते थे एक एक को। हमें याद है जब हमारी पहली बार मुलाकात, तो आज की मुरली सुन के हमें वो 50 वर्ष पहले की घटना याद आ गई। 52 साल पहले जब हम बाबा से पहली बार कानपुर में मिले, हम लखनऊ में ग्रेजुएशन कर रहे थे और बाबा कानपुर आए हुए थे। लखनऊ वालों ने प्लान बनाया बाबा से मिलने का, 2 घंटे का रास्ता होता है, 2-3 सब लोग कानपुर पहुंच गए। सुबह के वक्त जल्दी निकल के देखा बाबा क्लास करा रहे हैं, सब बैठे हुए थे, लखनऊ वाले भी सब पहुंच गए। लगभग क्लास का अंत हो चुका था तो फिर सब बाबा से मिले, और पहले बड़ों का नंबर आया, बुजुर्ग है, माता है वगैरह, फिर बाद में, उस समय तो हम लगभग 16-17 साल के थे, और बस बाबा से मिलने का नंबर आया। बाबा ने पूछा बच्चे क्या नाम है, तो आज की मुरली देख के सुन के हमें वही याद आ गया, एक्चुअली हमारा नाम है श्री। हा? आज बाबा ने क्या बोला श्री के लिए, नहीं श्रेष्ठ तो बोला, और क्या बोला, श्री कोई नहीं हो सकता, श्री का टाइटल तो लगा लेते हैं श्री श्री या वो, लेकिन गलत है बिल्कुल, श्री कोई हो, लेकिन हमारा तो लौकिक नाम जो माता पिता ने रखा हुआ था वो था श्री, तो हमने बताया श्री। तो बाबा ने कहा बच्चे क्या नाम, फिर हमने थोड़ा तेजी से बोला श्री, फिर तीसरी बार बाबा ने पूछा कि बच्चे क्या बोला, तो फिर हमने थोड़ा और लाउडली, मतलब बाबा श्री ये नाम है, अच्छा श्री, तो देखो बाबा कितना ह्यूमरस, हर एक को ये अनुभव होता था बाबा से कि बाबा मेरा है, जितना बाबा मुझे प्यार करता है उतना किसी को नहीं। तो बाबा ने कहा अच्छा श्री, अरे दादी दादी आओ, गंगे आओ, आओ कुमार का आओ, क्योंकि बाबा जब जाते थे तो बाबा के साथ बड़ी बड़ी दादियां वगैरह और गंगे दादी वहां रहती थी, बड़ी दीदी और दादी अक्सर करके बाबा के साथ चला करते थे, विशेष करके बड़ी दीदी, आओ आओ दीदी आओ आओ। देखो आज बाबा को एक बच्चा मिला है जो बाबा से भी महान है। कितना जॉली, मतलब जॉली मूड, और यंग लोगों को 17-18 साल यूनिवर्सिटी लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो बाबा बस बच्चों के साथ बच्चे जैसा, युवानों के साथ युवान जैसा, बूढ़ों के साथ बूढ़े जैसा, हर एक को ये लगता था बाबा मेरा है। वो ये तब अनुभव होगा जब हमारा उनके साथ ऐसा अंतरंग व्यवहार होगा। तो हम तो समझे नहीं, तब तो ज्ञान में कुछ 5-6 महीने ही हुए होंगे और देख रहे थे। तो बाबा ने कहा कि ऐसे करके सब चिटचैट करने लगे, हंसने लगे। तो बाबा ने कहा बच्चे बाबा ये क्यों कह रहा है पता है, तो हमने कहा नहीं बाबा। तो देखो बच्चे अभी तो फिर ज्ञान का रहस्य समझाया कि अभी तो श्री कोई लगा नहीं, ब्रह्मा बाबा भी अभी अपने को श्री नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता, श्री किसको कहा जा सकता है, किसको नहीं, जिसकी आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र, सतयुगी देवताओं को श्री लक्ष्मी श्री नारायण, और शिव बाबा को क्या कहते हैं श्री श्री। तो अभी तो न तो हमारी आत्मा पवित्र है, पूरी दुनिया में किसी की न शरीर पवित्र, शरीर का जन्म विकारों से होता है, आत्मा भी 84 जन्म लेते लेते पवित्र अपवित्र हो गई है। तो अभी कोई भी श्री नहीं लगा सकता, और इस कारण से बाबा ने उसका राज बता के फिर कहा, आज से बाबा तुम्हारा नाम मोहन देता है और फिर श्री जैसा तुम्हें बनना है। तो तब से हमारा नाम भी बाबा ने जैसे लौकिक रीति से मोहन कर दिया। और श्री जैसा बनना है, यानी कि हम सभी के लिए, भले एक दो को निमित्त होता है, लेकिन श्री जैसा हम सभी को बनना है। बाबा पुरानी बात भुला देना चाहता था। किसी का नाम कोई मानो माया देवी है तो बाबा कहता अरे अब माया का क्या काम है, अब तो कुछ नाम गीता देवी या कोई और सरस्वती, जो भी बाबा को प्रेरणा आती थी वो रख देता था। कोई का नाम बिल्कुल गरीब दास होता था, बाबा कहते अभी तो भगवान इतना सब अमीर बना रहा है, कुबेर बना रहा है, आज से गरीब दास नहीं, तुम्हारा नाम अमीर चंद, ऐसा करके बाबा वो बना देता था कि अभी दास भी नहीं हो, गरीब भी नहीं। इस तरह बाबा का भाव क्या होता था, हमारा इस शरीर का पुराना जन्म की बातें हमें भूल जाए, कोई नाम देने की बात ही नहीं है। तो हमें भी जब से हम ज्ञान में आए हैं और रोज हमारा जैसे नया जन्म, तो हम इस शरीर से संबंधित पुरानी बातें, भले उनके साथ व्यवहार करना है रहना है, लेकिन वो बातें हमारे ऊपर असर न डाल सके जो पुराने। ये बाबा की विशेष, और उसके लिए बाबा इतना प्यार देता था, इतना स्नेह, आओ बच्चे, और इस रीति से बाबा पुराना भुला देता था। और बाबा का क्या देखा कि शुरू में बाबा ना जब भी यहाँ आते थे, मिलते थे, तो तीन जगह बाबा मिलता था। अगर दो तीन की पार्टी होती थी, दो तीन लोग, तो बाबा अपने कमरे में। अभी तो बाबा का कमरा बहुत बड़ा है, तब तो सिर्फ उतना बड़ा था, एक चारपाई आती थी, इधर बाबा की जो संदली जैसी पड़ी हुई है गद्दा, वहां पर बाबा रहता था, और एक मेज कुर्सी बस, जहाँ बाबा खाना खाता था, और कुछ भी नहीं, इतना छोटा सा 8x8 का या 8x10 का कमरा था। ये तो बाद में एक्सटेंड किया गया। तो या तो बाबा वहां मिलता था, या अगर 6-8 की पार्टी होती थी तो बाबा की झोपड़ी जो है वहां मिलता था, या फिर अगर ज्यादा पार्टी 15-20 की, उस समय तो 15-20 माने आज के 200-300-400 की पार्टी जैसे, बहुत बड़ी पार्टी 15-20 की भी समझी जाती थी। 1960s की बात में ये बता रहे हैं, तो बाबा हिस्ट्री हॉल में मिलता था, उस रीति से होता था। तो ये बाबा का जो मिलने का होता था ना, और बाबा ने जब ये रियलाइज किया कि शुरू में ही 1936-37 में, उसके बाद ज्ञान मनन ये आसान है, सुनाना आसान है, लेकिन मन जो है बड़ा चंचल है। वाकई भक्ति में जो कहा है ऐसे नहीं कह दिया है, हम सभी का अनुभव है, मन बड़ा चंचल है, भाग जाता है, घोड़े की तरह है, आदि आदि। तो बाबा ने क्या करा फिर मन के लिए, जब मन भाग जाता है तो जैसे आत्मा, मैं आत्मा हूँ, शरीर भुलाने के लिए बाबा ने लिख लिख के पक्का किया, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, निर्मला आत्मा है, आदि आदि। तो मन को वश करने के लिए क्या किया बाबा ने, है? मन को बाबा ने पत्र लिखा। गौर से सुनना, हम लोगों को कॉपी दी गई थी, तो बाबा ने मन को क्या, बाबा ने तो सिंधी में लिखा था मन को पत्र, और उसका हिंदी कॉपी दादा आनंद किशोर होते थे, उन्होंने उसका हिंदी में अनुवाद करके हम सब पुराने भाइयों को एक बार 70s में वो पत्र की कॉपी दी। क्या लिखा था बाबा ने, गौर से सुनना। बाबा ने लिखा मन को, हे मन, मैं आत्मा राजा हूं, तू मेरा मंत्री है, लेकिन तूने मुझ आत्मा राजा को इतना कमजोर कर दिया और तू शक्तिशाली हो गया कि मैं तेरे कहने पर तेरे पीछे पीछे भागता रहा, और तू जहां जहां मुझे ले जाता रहा मैं आत्मा कमजोर होके तेरे पीछे पीछे चलता रहा। तूने मुझे एकदम शक्तिहीन बना दिया, जो तू कहता था मैं करता रहा, लेकिन हे मन, अब मैं तुझे कह देता हूं कि अब मैं आत्मा राजा अपनी शक्ति में, अपने स्वस्थिति में पुनः स्थित हो रहा हूँ, हो गया हूँ, अब मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा, तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं राजा हूँ, तू मंत्री है मेरा, तुझे मेरे कहने पर चलना, बाबा ने ऑर्डर दिया। और इसके साथ साथ ही बाबा ने बुद्धि को भी पत्र लिखा कि हे बुद्धि, तू भी मन के कहने पर, मन का साथ देते के चलती रही, और तूने भी मुझे अपने वश में कर लिया, और तुम दोनों ने मिलकर मन और बुद्धि ने मुझ राजा को इतना कमजोर कर दिया कि मैं आत्मा राजा शक्तिहीन हो गया, और मैं तुम्हारे कहने पर चलता रहा। लेकिन अब मैं तुझे भी कह देता हूँ कि हे बुद्धि, तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा। कई बार हम कह देते ना, बुद्धि हमारी ऐसी हो गई, भ्रष्ट हो गई, बुद्धि ने ठीक नहीं सोचा। तो मन और बुद्धि को बाबा ने ऐसा पत्र लिख करके स्ट्रांग रीति से ऑर्डर दिया, अब तुझे मेरे कहने पर चलना है, मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा। और ऐसा कह के बस, और उसके बाद से बाबा ने क्या विधि अपनाई, रोज रात को बाबा मन बुद्धि संस्कार की दरबार लगाता था। मैं राजा हूँ, तुम मेरे मंत्री हो, तुम सेनापति हो, मन मंत्री, बुद्धि सेनापति, संस्कार सैनिक। तो उनकी रोज दरबार लगाता था और देखता था, पूछता था, हे मन, मैं राजा हूँ लेकिन मेरे बिना परमिशन के आज तू वहां क्यों भाग गया, जैसे बात करके। और फिर बाबा देखता था धीरे धीरे धीरे, रोज दरबार लगाएंगे, बाबा ने कई बार कहा है, रोज इनकी अपनी सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की दरबार लगाओ, कहा है ना बाबा ने कई बार मुरलियों में। वो इसीलिए कहा है, जब तक हम दरबार नहीं लगाएंगे, मन को ये एहसास नहीं कराएंगे कि मैं राजा हूँ, तू मेरे अंडर है, तब तक मन भागता रहेगा, मन चंचल होता रहेगा, और ये मन हमें परेशान करता रहेगा। इस कारण से बाबा ने ये विधि अपनाई, और उसके बाद बिल्कुल बाबा मन जीते जगत जीत बनता चला गया। हर चीज का प्रमाण होता है ना, हमारी तबीयत खराब है, मानो देखेंगे भाई, थर्मामीटर लगा के देख लिया, अगर नॉर्मल से टेम्परेचर हाई है, इसका मतलब हम नॉर्मल नहीं है, हाई है, लो है। बीपी देखा, बीपी इंस्ट्रूमेंट होता है, अगर बीपी हाई है इसका मतलब ठीक नहीं है या लो है, और नॉर्मल ये होना चाहिए। ऐसी हमारा भी तो कोई मेजरमेंट होना चाहिए ना, हर कदम पर कि मैं ठीक डायरेक्शन में, मेरी गति भी ठीक है, मेरी डायरेक्शन भी ठीक है। अगर मैं ठीक डायरेक्शन में नहीं चल रहा हूँ तो भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, अगर डायरेक्शन ठीक है लेकिन गति बहुत स्लो है तो भी समय पर नहीं पहुंच पाऊंगा। इसीलिए हर जगह हमारा ऑडिटिंग हो, हमें खुद करना है, अपनी चेकिंग खुद करनी। और वो बाबा करता था, कैसे करता था बाबा, मन के लिए ये था, तो एक तो बाबा ने ये करा, और उससे कैसे होता था वो, हम भी मन को चाहते तो हैं, मन मेरे ऑर्डर में चले, लेकिन मन नहीं चलता है, क्यों, क्योंकि हम अपने सीट पर स्थित होके मन को ऑर्डर नहीं देते। मानो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, अभी भी इलेक्शन हुए, कोई नया प्राइम मिनिस्टर, पुराना प्राइम मिनिस्टर जा रहा है, जब तक प्राइम मिनिस्टर है तब तक ऑर्डर उसका सब मानेंगे, जब वो मानो रिटायर हो गया या नहीं रहा सीट पर, ट्रांसफर हो गया, प्राइम मिनिस्टर ने कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर भी कोई उसकी बात नहीं मानेगा। ऐसे ही हम अपनी सुमान की सीट पर स्थित होकर मन को ऑर्डर नहीं करते तो मन मानता नहीं, लेकिन हम पहले अपने सुमान की सीट पर स्थित हो, जो बाबा ने हमें अनेक अनेक सम्मान दिए हैं, मैं कल्प पहले की विजयी आत्मा हूँ, कल्प पहले भी बाबा आपने मुझे विजयी बनाया था, अभी भी बना रहे हो, कल्प कल्प आप इसी प्रकार से विजयी बनाते रहेंगे। ये हम अपने सबकॉन्शियस मन को ऑर्डर करें, बहुत सबकॉन्शियस मन हमेशा पॉजिटिव ऑर्डर्स को स्वीकार करता है। ये अगर संकल्प आया, पता नहीं मैं बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा, इतनी सारी दादियां हैं, बाबा ने कहा अपने को माला का मणका समझो, मैं कैसे माला का मणका, गृहस्थी आदमी, नौकरी धंधा करता हुआ, सुबह बस एक बार दो बार क्लास कर ली, हमारी दादियां दीदियां वरिष्ठ भाई जिन्होंने जीवन समर्पित कर दिया, माला का मणका तो वो बनेंगे, बस अभी समय चल रहा है कौन सा, ये जो मन का समय है ना, ये समय ही चल रहा है इच्छा मात्रम अविद्या का। मन को अगर जरा सा भी ये संकल्प दिया, और भक्ति मार्ग में कहा जाता था भक्त जो दिल से संकल्प करता था भगवान बस एक ही शब्द का उच्चारण करते थे, कौन सा, तथास्तु। हम खुद ही संकल्प कर रहे हैं मैं कैसे बनूंगा, मैं गृहस्थी वाला, हमारी तो ये फलाने आशा दीदी बन जाएंगी, ब्रजमोहन भाई बन जाएंगे, फलाना बन जाएंगे, तो बाबा भी कहते हैं तथास्तु, उन्हें बनने दो, तुम मत बनना। तो कभी भी अपने लिए कभी भी कमजोरी का संकल्प नहीं, हमेशा थिंक वेरी हाई। और मन जीते जगत जीत का यही लक्षण है। बाबा ने कभी भी ना मन को कमजोर संकल्पों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। तो आज से एक तो हम ये संकल्प करें, चाहे जैसी परिस्थिति हो, हमेशा मन को हम पॉजिटिव संकल्प, नहीं मैं ही वो कल्प पहले वाली आत्मा हूँ, विजयी आत्मा हूँ, बाबा ने कहा है माला का मणका बनाना ये मेरा काम है, तुम संकल्प तो करो। एक ही माला की बात नहीं है, बाबा ने क्या कहा है माला का, सबसे बड़ी बात माला की विशेषता शायद आपने सुनी होगी, एक मुरली में आई थी, गौर से सुनना, कि माला की सबसे बड़ी विशेषता ये है उसमें मेरे सब प्रकार के बच्चे हैं, पुराने से पुराने भी हैं जो 1936-37 के हैं, तो नए से नए भी हैं जिनके लिए गायन है लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट का गायन, उसमें भारतवासी हैं तो विदेशी भी हैं, उसमें कुमारियां हैं तो अदर कुमारियां भी हैं, कुमार हैं तो अदर कुमार भी हैं उसके अंदर, प्रवृत्ति वाले हैं तो कुमार कुमारियां भी हैं, हर प्रकार का मेरा बच्चा है। तभी तो भगवान को न्यायकारी बोलते हैं, गवर्नमेंट में भी हर प्रकार के सीट रिजर्व होती है ना भाई, ये इतने टोटल 50 सीट है, 25 अनरिजर्व है, तो दो शेड्यूल कास्ट की, दो शेड्यूल ट्राइब की, दो बैकवर्ड की, आदि आदि उनकी रिजर्व होती है, उसमें वो ही कोटा भरा जाता है जो उसका होनी, तो वो खाली पड़ी रहती है। तो माला की भी यही विशेषता है कि जो अदर कुमार की सीट रिजर्व है उसमें कुमार कुमारियां चाहे जितने भी हाई वाले हों समर्पित हो, लेकिन भरी वो माला की मणका उससे ही जाएगा जो अदर कुमार कुमारियों में सबसे आगे होगा। हर चीज की इसके अपने लिए ताली तो बजाए हम सब लोग ना, कि हमारे लिए बाबा ने ऐसी सीट भी रिजर्व करके रखी है। वो ये अगर बाबा ने भी सारे 1936-37 वाले ही ले लिए तो आपका और हमारा स्कोप कहाँ रहा, ये तो भगवान न्यायकारी तो नहीं हुआ, भगवान तो न्यायकारी है, सबको न्याय देने वाला है। इस कारण से एक तो ये है, सारा हमारे संकल्प पर निर्भर करता है। अब हम कैसे समझें कि हमारा अपने संकल्पों पर विजयी होती जा रहे हैं, मन जीते जगत जीत बनते जा रहे हैं, कैसे समझें, ये बाबा का हमने देखा, साकार बाबा का। पहले बाबा बहुत टाइम देते थे, आओ बच्चे बैठो, जीवन कहानी लिख करके दो, बाबा देखते थे, पढ़ते थे, सावधानी देते थे, 61-62 की बात। फिर 65-66 में तक जब मिलते थे, बाबा जरा सा सुनी बात, हमने एक दो लाइन बोली, बाबा कहता था हाँ बच्चे, बाबा समझ गया। बाबा अभी तो हमने बोलना शुरू ही किया है, अभी तो बात पूरी बोली नहीं, कि नहीं बच्चे, बाबा समझ गया, ऐसा ऐसा ये बोलने वाले हो, बाबा सही बात बताता। लेकिन 17-18 जनवरी को हमने क्या देखा, गौर से सुनिएगा, कई बार हमने नरेट किया है। 17 जनवरी की हम सुबह यहाँ पहुंच गए, इंजीनियरिंग पास करने के बाद हमारी पहली पोस्टिंग ONGC में आसाम में थी, उस समय आसाम में थे, और बाबा ने युक्ति से अपने पास बुला लिया और ऐसा ही संदेश दिया कि बच्चे आओ और प्लेन से आओ। तो आसाम से, अदरवाइज नॉर्मल केस में आते बहुत टाइम लगता, प्लेन से आए 17 जनवरी की सुबह यहाँ पहुंच गए, और बस बाबा से मिले, देखा, और हम बाबा के सम्मुख लगभग 7 बार मिलना हुआ 17 और 18 जनवरी को। तब पार्टियां तो विशेष होती नहीं थी, बाबा था, हम लोग थे, हम और हमारे लौकिक पिताजी, और साथ में 2-3 और भाई बहन थे, बाकी मधुबन में रहने वाले 15-20 लोग रहा करते थे उस समय। तो बाबा के सम्मुख हम जाते थे, बाबा से हम ये बात पूछेंगे, बस बाबा के सम्मुख गए, बाबा ने दृष्टि दी और दृष्टि देके बाबा के अच्छे बच्चे ये पूछने आए हो, ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। मतलब एक अक्षर भी बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी और बाबा जस्ट दृष्टि से ही पूरी मन की बात को समझ जाता था और बताता था, ये पूछने आए हो ये ऐसा कर लो ऐसा हो जाए। एक बार, दो बार, तीन बार, 6-7 बार ऐसा हुआ, क्योंकि तब तो फ्री थे सारा दिन भर, बाबा कभी यहाँ मिलते थे, कभी कमरे में टहल रहे हैं, भोजन भी बाबा के साथ करते थे, कभी हिस्ट्री हॉल की छत पर आदि, या कभी अंदर। उन दिनों तो ठंडी के दिन थे, धूप का दिन होता था तो बाबा ऊपर हिस्ट्री हॉल की छत पर बैठ जाते थे, बाबा एक तरफ, इधर एक तरफ भाई लोग, एक तरफ बहने लोग, और भोजन करते हुए बाबा एक एक गिट्टी सबको खिलाता था और फिर सब लोग भोजन किया करते थे आदि आदि। तो इस रीति से ये मन की बात बिना एक अक्षर बोले समझ जाना और उसका बता देना, यह है मन जीते जगत जीत का लक्षण। और ये कब होगा? जब हमारे अपने मन में कोई व्यर्थ संकल्प, कोई भी इच्छा नहीं होगी तो हम दूसरे के मन के भाव को तुरंत पढ़ सकते हैं। जैसे पानी होता है ना, पानी निर्मल पानी है, साफ है, कोई हलचल नहीं है, हम अपना चेहरा भी उसमें देख सकते हैं। लेकिन अगर एक छोटी सी कंकड़ी भी उसमें डाल दो, लहरें पैदा होंगी, तो हमें अपना चेहरा स्पष्ट दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। ऐसे मन भी जो है ना, संकल्प लहरें हैं। हमारे मन के अंदर कोई भी अगर बात है, किसी के प्रति है, कोई भी दृष्टि के द्वारा, कान के द्वारा कोई भी बात सुनी हुई, कोई भी संकल्प रूपी लहरें चल रही हैं, तो हम दूसरे के संकल्प को पढ़ नहीं सकते कभी। मन जीते जगत जीत नहीं बन सकते। तो इसीलिए मन के हारे हार है मन के जीते जीत। तो ये बाबा का अंतिम 2 दिनों में हमने बहुत बार नोट किया। और खाली यही नहीं, 18 जनवरी की रात को बाबा क्लास करा रहे थे हिस्ट्री हॉल में, और वहां पर बाबा क्लास करा रहे थे, हम सामने बैठे हुए थे, क्लास सुन रहे थे, बड़ी दादी जी भी, कुमार का दादी जी भी सामने बैठे हुए थे। बस बाबा क्लास कराते कराते, वैसे बाबा को कई बार खांसी, उम्र भी 93 थी, सर्दी का मौसम भी था, तो बाबा को कई बार खांसी आ जाती थी, और खांसी आते आते ऐसे हम लोगों को लगता था जैसे बाबा को बड़ी बेचैनी हो रही है, आंख भी कभी कभी गीली जैसी हो जाती थी। तो ये कई बार फिर बाबा क्या कहता था, हाँ, खांसी को क्या कहता था, सखी है ये तो, मतलब हर चीज को स्वस्थिति से, मन की स्थिति से परिस्थिति को बदल लेना, ये है माला के मणकों की निशानी, स्वस्थिति। अभी बाबा को खांसी आ रही, हम लोगों को लग रहा था ये है, दूसरे क्षण बाबा क्या कहता करता था, सामने वो चित्र होता था कृष्ण का, ट्रांसलाइट का और लक्ष्मी नारायण का, बाबा कहता देखो बच्चे आज ये पुराना शरीर है, खांसी आ रही है, तकलीफ होती है, लेकिन कल बाबा जाके ऐसा मिशनु कृष्ण बनेगा, कैसी नई दुनिया होगी। और कहते सुनते कहते कहते बाबा के चेहरे पर एकदम भाव, एकदम खुशी का आ जाता था, और उस खुशी के भाव में खांसी तो कहाँ चली गई, स्वस्थिति इतनी बाबा तुरंत चेंज करके इतनी मजबूत कि परिस्थिति एकदम गायब हो जाती थी खांसी की परिस्थिति। अब बाबा के चेहरे पर वही रोशनी, वो खुशी, एकदम बच्चे इतनी खुशी हो जो कोई गम हो, कोई तकलीफ हो उसको खा जाए। खुशी में क्या करना चाहिए, क्या बोलता था बाबा, खग्गिया मारनी चाहिए, मालूम है ना, बाबा दिखाता था बच्चे ऐसे करके ना। और मतलब भाव क्या है कि खुशी ये रिफ्लेक्ट होनी चाहिए चेहरे से, गम का सीन भी हो, इतनी खांसी आती थी लेकिन बाबा परिस्थिति को, यह है मन शक्तिशाली होने की, मन जीते जगत जीत की निशानी कि तुरंत उस परिस्थिति को बदल देना। एक ये बात बाबा की देखते थे। और दूसरी बात, 18 जनवरी को जब बाबा क्लास करा रहे थे उस दिन बाबा को एक बार भी खांसी नहीं आई 18 जनवरी को। रात्रि क्लास आप सुने यहीं पर ही ओम शांति भवन के नीचे सीडी मिलती है, अंतिम 18 जनवरी के जरूर सुनना चाहिए। तो उसमें बस बाबा ने जो बोला सारा मुरली चलाई, एक बार भी न खांसी आई न गला साफ करने की जरूरत पड़ी, जो इस बात का प्रतीक है क्या कि अंत समय में जब हम कर्मातीत अवस्था को पालेंगे, फरिश्ता स्वरूप स्थिति हो जाएंगे, तो हमारे शरीर के कर्म भोगों के ऊपर हमारा योग बल संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेगा। अंतिम में शुरू में ये तकलीफ देंगे, जब हम कर्मातीत अवस्था की तरफ बढ़ रहे होंगे, अधिक से अधिक कर्म भोग आएंगे शरीर के, वो जो बाबा ने भी कहा ना, तुम चाहो ना चाहो मैं तुम्हें बना के ले भी जाऊंगा, और ये शरीर के कर्म भोग आएंगे ही। लेकिन अंतिम में निशानी क्या है, 18 जनवरी को बाबा ने जब क्लास कराई, एक बार भी खांसी नहीं आई, ये उसका निशानी है। और दूसरा, हमारा अंत मते सो गति कब होगी, जब हमें भी इच्छा मात्रम अविद्या, और दूसरी बात हमारी इच्छा मृत्यु। अब हम इन मृत्यु के लिए तैयार नहीं है, मानो अर्थ को एकाया यहाँ बैठे हैं, ये बीम गिरी, ऊपर से सीमेंट गिर रहा है, बीम गिर रही है, एकदम चारों तरफ हड्डी टूट रही है, खून खराबा हो रहा है, ऐसा आवाज, तो प्रकृति के तत्वों की तो हलचल होनी है बहुत ज्यादा, वो परिवर्तन के निमित्त भी बनेंगे। ऐसे समय अगर हमने शरीर छोड़ दिया, तब तो अंत मते सो गति तो नहीं होगी, कोई सदगति के अलावा कोई और गति होने की संभावना जाता है। क्यों, ऐसा वातावरण चारों तरफ होगा, हाहाकार चीख, वो इच्छा मृत्यु नहीं हुई। लेकिन बाबा ने भी अपने को इस स्थिति तक पहुंचा लिया था, इच्छा मृत्यु तक। उन बाबा को, बाबा ने जैसी मुरली, क्योंकि रोज मुरली होती थी 8:45 बजे, उस दिन 7 बजे ही बाबा ने जमुना प्रसाद भाई को बुला के कहा कि आज बाबा जल्दी क्लास कराएगा, सबको इन्फॉर्म कर दो। तो बाहर एक घंटा रखा रहता था, उन्होंने बजा के सब इकट्ठे हुए, सबको कह दिया आज बाबा जल्दी क्लास कराएगा, सब आ गए। बाबा भी 7:30 बजे तक जैसे आ गए, अब मुरली क्लास चलाई, और उसके बाद बाबा उठे हिस्ट्री हॉल में, बस कितना छोटा ही है हिस्ट्री हॉल, यहाँ से यहाँ जाते हुए रुके, एक दो कदम बढ़ाया रुके, फिर सबको दृष्टि, एक एक को दृष्टि देने लगे बाबा, दृष्टि दे करके बार बार बाबा की दृष्टि दादी जी की तरफ जाती थी, दादी को दृष्टि दी, फिर बाबा एक कदम आगे बढ़ के फिर गए, फिर रुक गए। बाबा को हो कि आज मैं बच्चों को बस शक्ति से संपन्न कर दूं, क्योंकि बाबा को तो आभास हो गया था कि ये मेरा साकार में अंतिम मिलन है। शिव बाबा को जैसे ब्रह्मा के शरीर के द्वारा अंतिम मिलन, इसलिए बाबा यहां से यहां तक जाने में ही 4-5 बार रुके, और फिर बाबा को बस एकदम बहुत जैसे अव्यक्त फरिश्ते रूप से बाबा एक एक बच्चे को दृष्टि देके, और बाद में बाबा ने क्या कहा मालूम है, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदाई लेता है, जो इस बात का प्रतीक है कि बाबा को मालूम था ये अब मैं जा रहा हूँ, बच्चों से विदा ले रहा हूँ, और वहां जाके बाबा ने वैसी स्थिति को। तो ऐसा ही हो, बाबा ने हमें बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन भी दी है, मन जीते जगत जीत का यही लक्षण, कि अंत में जब ऐसा होगा, अगर हमारा बाबा से वॉइसलेस कनेक्शन होगा, वायरलेस तो है ये, अभी मोबाइल है और ये सब चार्ज है, इनके द्वारा हम बात कर लेते हैं, लेकिन अंत में जब ये कोई काम नहीं करेंगे, कोई काम नहीं, हम लोगों को पढ़ाया गया था क्योंकि अर्थ जियोफिजिक्स का एक स्पेशल पेपर, अंत में जब रिवर्सल ऑफ मैग्नेटिज्म, नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा, साउथ पोल नॉर्थ पोल रिवर्स होगा, तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है सब जीरो हो जाएंगे, कोई भी काम नहीं करेगा। और ऐसा जैसे अर्थ जो है हर कुछ वर्ष बाद, विज्ञान कहता है ये होता रहता है, लेकिन अभी तो ये डेवलपमेंट सब लास्ट 100 साल के अंदर की है। तो जब ये नहीं होगा, तो जिनकी वॉइसलेस बुद्धि, वॉइसलेस कनेक्शन होगा, उनको अंत समय ये ही आभास होगा, टचिंग होगी कि जहां सेफ्टी होगी उनके कदम ऑटोमेटिकली उधर बढ़ेंगे, बाबा के बच्चों के। हम तो यहाँ मधुबन में रहते हैं, पिछले 18 सालों में हमने देखा इतने चिट्ठियां आते हैं, जो लाटूर का अर्थक्वेक हो, चाहे भोपाल गैस ट्रेजेडी हो, चाहे जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं, कितने बच्चों के बाबा ने अंत समय में मुझे ऐसा टच किया और सीधा ही मैं उधर की तरफ गई या गया और रक्षा हो गई। नॉर्मली मैं इधर जाते ही हूँ और इधर जाते थे, उधर की दीवार गिर गई और उसके अंदर तो सारे मर गए, आदि आदि। तो हमारा कनेक्शन वॉइसलेस कनेक्शन ये होना चाहिए, ये हमें सफलता की ओर ले जाएगा। एक तो बाबा का ये देखा, मन जीते जगत जीत, की अंत समय मन के अंदर वो ही संकल्प आएगा जो सिद्ध होने वाला होगा। और इसके लिए क्या करना है, तैयारियां तो करनी पड़ेंगी ना अभी से। तो बाबा ने हम बच्चों को अनेक पेपर बताए हैं, लेकिन जो हमने देखा बाबा ने बताया और बाबा में देखा हमने, पहला पेपर, एक पेपर शरीर का सबके सामने आएगा और दूसरा परिवार का पेपर। तो शरीर का पेपर आएगा क्यों, क्योंकि ये शरीर, आत्मा का शरीर पांच तत्वों से बहुत गहरा संबंध है। सतयुग के आदि से पहले जन्म से लेकर के आत्मा का इस अंतिम जन्म तक पूरा कनेक्शन है, भले भिन्न भिन्न नाम रूप हो, तो पुरुष और प्रकृति का ये संबंध। तो इसीलिए अंत समय में सारे हिसाब किताब हमारे इस प्रकृति के साथ, जितने हिसाब संबंधों में दुनिया वालों के साथ हिसाब किताब तो अलग अलग रीति से चुकते होते हैं, लौकिक हो अलौकिक हो, लेकिन प्रकृति के साथ जो हिसाब है वो हमारा इस शरीर से चुकते होना है, क्योंकि अंत में तो यही शरीर है। और हिसाब किताब इस शरीर का ही नहीं है, इस जन्म का ही नहीं है, 63 जन्मों का हिसाब किताब इस तन के द्वारा। तो युवान ये ना समझे युवा जो है कि हम तो युवा है, कोई बीमारी की बात नहीं, आदि आदि ऐसे चुकते होंगे जिन चीजों की कल्पना भी नहीं की होगी उस रीति से। तो उसके लिए क्या करना है, बाबा ने क्या अभ्यास किया, बाबा को एक अभ्यास बहुत पक्का था, शरीर में आने का और शरीर से न्यारा होने का। जैसे पार्टियां जब मिलने आती थी, मानो टाइम दिया हुआ है 10 बजे वही दिल्ली पार्टी, 10:30 बम्बई, 11 कलकत्ता, आदि आदि। तो बस 10 बज गए, ब्राह्मणी आई, बाबा ने मानो टाइम दिया हुआ है हिस्ट्री हॉल में, तो देख रही है बाबा के पास आई, देखा बाबा बड़ा मगन स्थिति में बैठा हुआ है, आंख खुली है, कोई ध्यान में भी नहीं है लेकिन मगन स्थिति है। तो पहले तो हिचकिचाती थी बहन और कहती थी फिर बाबा बाबा, तो बाबा को थोड़ा जर्क सा जैसे लगता था, यानी कि देह यहाँ लेकिन मन से बाबा कहीं और होता था। जो बाबा ने 4-5 स्थान का चक्कर का भी बताया ना, परमधाम है या सूक्ष्म वतन है आदि आदि, तो बाबा जैसे खुद उस अभ्यास। हाँ बच्ची बोलो बोलो, बाबा फलानी जगह से पार्टी लाई हूँ। अच्छा अच्छा बच्ची लेके आओ। आते थे सब बैठ जाते थे, बाबा से मिलते थे, टोली लेते थे, हालचाल बाबा पूछते थे, और उसके बाद जैसी वो पार्टी गई या दूसरी पार्टी में मानो टाइम है नहीं आए, फिर बाबा देह से न्यारे हो जाते थे। तो देह में, देह से न्यारा होने का और देह में आने का अभ्यास, ये हमें अंत समय में बहुत मदद करेगा। और ये ही बाबा का देखा ऐसा अभ्यास था, बाबा को थोड़ा भी टाइम मिला बाबा देह से न्यारा हो जाता था। शरीर की भी बीमारी जितनी होती है, हमने खुद प्रैक्टिकल में 2 बार अनुभव किया है, जितनी भी कड़ी बीमारी हो, बहुत दर्द हो, एकदम चैन ही न पड़ रहा हो, लेकिन अगर अपने को बस मैं आत्मा हूँ, शरीर से अलग हूँ, न्यारी हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, जितना न्यारेपन का अभ्यास होगा, ये शरीर को कष्ट होगा, बहुत व्याधि होगी, लेकिन आत्मा को उसकी महसूसता नहीं होगी। जैसे एनेस्थीसिया होता है या क्लोरोफॉर्म आदि, वो तो हमारी रचना है। जब वो ये अनुभव करा सकती है मैं आत्मा तो रचयिता हूँ, वो ये अनुभव करा, उसके बाद डॉक्टर चीरा फाड़ी करेगा, खून बहेगा, कुछ भी होगा, हमें अनुभव ही नहीं होगा दुख का, एनेस्थीसिया में जैसे होता है। ये चीज का अनुभूति वो तभी होगी जब हम देह से न्यारा अपने को अशरीरीपन का अभ्यास का, और ये बाबा में स्पष्ट दृष्टिकोण होता था। दूसरा पेपर परिवार का पेपर, अभी हमारा ब्राह्मण परिवार जितना बढ़ता चला जा रहा है ना, तो हमें दुनिया वाला अगर कोई भी गलत बात करेगा, क्रोध करेगा या कोई भी विकारों के वशीभूत होगा, हमें संकल्प नहीं चलेगा, क्योंकि दुनिया है वो विकारों के वशीभूत है ही। लेकिन अगर ब्राह्मण परिवार में हम किसी को देखते हैं, अरे ये 10 साल पुराना है, ये 15 साल, ये इनमें भी इतना क्रोध, इनके अंदर भी ये विकार की प्रवेशता, इनके द्वारा भी ऐसा, तो हमारा मन हलचल में आ जाता है। अरे मैं तो अभी 10 साल का ही हूँ, 10 साल की हूँ, 5 साल की, ये तो 25 साल पुराने हैं, तो वो व्यर्थ संकल्प के निमित्त बन जाते हैं बहुत। तो बाबा ने इसके लिए क्या बताया, इस पेपर को पार करने के लिए क्या करना है, हरेक को हम एक तो तीनों कालों की दृष्टि से देखें, केवल वर्तमान काल की दृष्टि से नहीं। हम जब केवल उसका वर्तमान देखते हैं तो हमारा मन हलचल में आ जाता है, लेकिन सच्चा सच्चा मन जीते जगत जीत बनने के लिए उसको हम ये भी करें, अरे ये वो ही आत्मा है जो कि सतयुग में डबल ताजधारी थी, अभी ऐसी स्थिति है लेकिन फिर ये डबल ताजधारी बनने वाली है। दूसरी युक्ति बाबा ने बताई है क्या, कि मेरा जो बच्चा है, लास्ट में लास्ट बच्चा भी जो है वो आज के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से भी महान है। क्यों? क्योंकि मैंने, भगवान ने उसे चुना है और भगवान का सिलेक्शन कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो मैं भगवान की चुनी हुई आत्मा हूं, ये अगर जितना हमें रहेगा हर आत्मा के लिए, इस आत्मा में मानो हम कोई कमजोरी का संस्कार देख रहे हैं आज, लेकिन ये वही आत्मा है जो भगवान ने चुनी है, भगवान का सिलेक्शन कभी गलत नहीं हो सकता। आज ये पार्ट प्ले कर रही है लेकिन ये फिर से डबल ताजधारी आत्मा बनने वाली है। कोई भी फिल्म होता है, नाटक होता है, सबका पार्ट एक जैसा थोड़ी होता है, हीरो का पार्ट अलग, हीरो हीरोइन का, कॉमेडियन का अलग, विलेन का पार्ट अलग, नाचने गाने वाले का अलग, और सारे दृश्य अलग अलग चलते हैं, इस कारण से वैरायटी होती है, नाटक में आनंद आता है। और बाबा ने भी इस नाटक के लिए कहा है कि ये नाटक मुझे अति प्रिय है। क्यों? क्योंकि हरेक जो पार्ट बजा रहा है वो बिल्कुल एक्यूरेट, उससे ज्यादा एक्यूरेट बजा नहीं सकता था, इसलिए मुझे ये नाटक अति प्रिय है। तो इस कारण से किसी के भी हम पार्ट को देख करके कभी ये संकल्प हमारे अंदर ना आए, ऐसा क्यों, ऐसा इतना पुराना भाई, इतनी पुरानी बहन, ऐसा, वो हमें व्यर्थ संकल्पों की तरफ ले जाता है और उसमें हमारा टाइम, एनर्जी, सभी कुछ वेस्ट हो जाती है। इसीलिए बाबा की तरह मन जीते जगत जीत बनने का ये। और अंत में क्या देखा, जब 18 जनवरी को बाबा क्लास करा के गए अपने कमरे में, तो दादी के हाथ में हाथ शरीर छोड़ दिया। लेकिन आश्चर्य तो उसके बाद देखा, क्या आश्चर्य, कि बाबा ने 18 जनवरी की शाम को शरीर छोड़ा, रात्रि को, 18 जनवरी की रात को शरीर रखा रहा, 19 तारीख को सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, 21 को भी दोपहर के बाद बाबा का संस्कार कराया गया। चूंकि हम तो यहाँ थे, हमने देखा बाबा का शरीर को स्नान आदि कराया, जितने वरिष्ठ भाई लोग थे उन सब के साथ मिल करके, और बाबा के शरीर में कोई अकड़न नहीं। जब आत्मा शरीर छोड़ के चली जाती है ना, तो शरीर स्टिफ हो जाता है, अकड़ जाता है, काला पड़ जाता है, दुर्गंध आ जाती है, आदि आदि। न बाबा के शरीर को कोई इंजेक्शन दिया गया था, न कोई केमिकल लोशन लगाया गया था, लेप, कुछ नहीं। हम तो यहीं थे, यहीं साक्षी थे उस बात के, और ये कुछ भी नहीं किया गया, फिर भी बाबा का शरीर वैसा ही चमकता हुआ, और बस लगता था जैसे बाबा सो रहे हैं, हमेशा की तरह उठ के कहेंगे, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ प्यारे बच्चे। बिल्कुल शरीर चमकता हुआ, और शरीर को जब स्नान भी कराया, काफी हद तक शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी थी, काफी हद तक, बहुत। वो इस बात का प्रतीक है, क्या, प्रकृति जीत का प्रतीक। बाबा ने इस 5 तत्वों के बने हुए शरीर, इस प्रकृति पर इतनी विजय प्राप्त कर ली थी कि आत्मा शरीर छोड़ के जा भी चली भी गई, फिर भी इस प्रकृति ने अंत तक साथ दिया। यही बात बाबा अब हम बच्चों से एक्सपेक्ट करता है। आप सब बच्चे भी मन जीते जगत जीत बन रहे हो, संबंधों में मधुरता, बाकी ज्ञान गुण शक्ति वो सब धारण कर रहे हो, वो तो ठीक है, लेकिन साथ साथ हम में से हर एक को प्रकृति जीत भी बनना है। कैसे बनेंगे प्रकृति जीत? बड़ा इसके अंदर भी, क्योंकि जब तक हम प्रकृति जीत नहीं बने, जितना हमने सेवा कर ली, जितना ज्ञान योग गुण धारण कर लिए, प्रकृति जीत अगर नहीं बने तो सतयुग का ऊंच पद प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति ही है जो आदि से लेकर अंत तक हमारा साथ देती है, पहले जन्म से लेकर अब तक। केवल एक बात बताएंगे, प्रकृति जीत, अभी अंत में पांचों तत्वों की हलचल तो बहुत होगी, लेकिन बाबा ने क्या कहा, किस तत्वों की हलचल बहुत ज्यादा होगी? सबसे ज्यादा पांचों तत्व इकट्ठे भी अपने जलवा दिखाएंगे। अभी तो एक तत्व जलदा, उत्तराखंड में कितने तत्वों की हलचल थी? तीन तत्वों की। हमेशा एक तत्व तो हमेशा अर्थक्वेक आ जाता है, कभी फ्लड आ जाता है, कभी सुनामी। वहां पर एक तो क्लाउड बर्स्ट हुआ, आकाश तत्व में बादल बनते हैं, क्लाउड बर्स्ट, कितना पानी एट ए टाइम आ गया। दूसरा पानी, जल तत्व की हलचल, इतना तेज फ्लड आया, 25-30 फीट ऊंची पानी की लहर, दीवार जो है वो चल पड़ी। और तीसरा लैंडस्लाइड। ये तो अभी तो कभी दो तीन तत्वों की हलचल थी तो कितना हुआ, और अभी तो पांचों तत्वों की हलचल होनी है। तो इसीलिए उन हलचल में विजयी बनने के लिए एक मानो अर्थक्वेक आया, हमारा बाल बांका भी न हो, उसके लिए क्या बाबा ने शिक्षा दी है? ये जो पृथ्वी तत्व है ना, इसको हम अपना मित्र बना लें। पृथ्वी में कौन से गुण है? बहुत गुण है, लेकिन मैं एक सिर्फ बताता हूँ। पृथ्वी में सबसे बड़ा गुण कौन सा है? दातापन का, देने का। पृथ्वी में एक बीज बो दो, पेड़ उगाएगा, हजारों बीज पैदा हो जाएंगे, और पृथ्वी दाता है, अनाज, पानी, मिनरल्स, पेट्रोल, फल फूल सब कुछ देती है। ऐसी हमने भी अगर दातापन का गुण धारण किया होगा, देने का माने स्थूल चीज नहीं, प्रेम, शुभ भावना, सद्भावना, रिस्पेक्ट, रिगार्ड, जिसमें कुछ खर्चा भी नहीं होता, तो दाता अगर हम बने हुए होंगे, तो जैसे पृथ्वी का ये गुण धारण कर लिया हमने, तो कभी भी पृथ्वी में जितनी भी हलचल होगी, ये पृथ्वी हमारी मृत्यु का कारण नहीं बन सकती। और ये आधार होगा, सिर्फ इसका आधार है मन। मन जीते जगत जीत, जगत के अंदर तो ये पृथ्वी पांच तत्व भी आ गए। ये पांच तत्वों को जीतना बहुत जरूरी है, इनके बिना जीते नहीं होगा। इसी तरह जल का सबसे बड़ा गुण कौन सा है? फ्लेक्सिबिलिटी। जल होता है, गिलास में ले लो, गिलास का रूप धारण कर लेगा, कटोरी में लो, कटोरी का रूप, चम्मच में लो, चम्मच में, थाली में लो, थाली, एडजस्टमेंट का गुण। ऐसे ही हमारे में अगर एडजस्टमेंट का गुण हो, ये हम ना कहें कि इनके साथ तो एडजस्ट होना आसान है, उनके साथ बड़ा मुश्किल है, हर एक के संस्कार अलग अलग होते, नहीं, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो, ऐसा हो जैसे बाबा, मैंने बताया ना, बाबा में सबसे बड़ा गुण यह था, बूढ़ों के साथ बूढ़ा जैसा, जवानों के साथ जवान जैसा, बच्चों के साथ, हर एक के साथ इतना एडजस्ट होके चलना, ये है एक प्रकृति जीत का लक्षण। और इस कारण से ये जितना होगा, तो पानी के तत्व का गुण धारण कर लिया, तो ये पानी जो है ना, हमारी मृत्यु का, चाहे जितनी सुनामी हो, फ्लड हो, क्लाउड बर्स्ट हो, जितना हो, पानी हमारी मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि पानी को हमने फ्रेंड बना लिया। हमेशा फ्रेंडशिप उन्हीं के बीच में होती है जिनके संस्कार एक जैसे होते हैं। तो पानी के इस संस्कार से हम मिल जाए। वायु का क्या संस्कार है? वायु का है हल्केपन का। पृथ्वी हर चीज को नीचे खींचती है, वायु हर चीज को ऊपर ले जाती है। तो वायु तत्व की तरह हम सदा जीवन में हल्के रहने का वो संस्कार सीखें, चाहे जो भी परिस्थिति आए, मन हमारा भारी ना हो। मन अगर हमारा भारी हो जाएगा, हम आजकल साइंटिस्ट इंजीनियर विंग की कॉन्फ्रेंस चल रही है, तो वहां एक साइंटिस्ट DRDO के आए थे, वो बता रहे थे, एक बार कहां पूछा गया कि आत्मा भारी है या शरीर भारी है, कौन भारी है? शरीर। वास्तव में शरीर स्थूल रीति से भारी है, लेकिन आत्मा जो है ना, आत्मा का भारीपन ही शरीर को भी भारी। आत्मा में आपका मानो भारीपन आया, कोई परिस्थिति, कोई संबंध में कटुता कुछ आया, उसका असर इमीडिएटली शरीर पाचन क्रिया के ऊपर, अपने टेम्परेचर, हर चीज पर पड़ता है। आत्मा वास्तव में भारी है, तभी तो बड़ा अच्छा उदाहरण बताया कि शरीर जो होता है ना वो तो डूब जाता है, लेकिन आत्मा जब निकल जाती है तो शरीर तैरता रहता है पानी पर। तो भारी कौन हुआ? भारी आत्मा ही तो बनाती है, तो वो भारी आत्मा बना के शरीर डूब जाता है। इसीलिए ये भी कहते हैं, बच्चा जब पैदा होता है ना, तब उसका वजन लगभग कितना, 2.5 किलो के करीब होता है ना, 5 पाउंड के करीब। और जब व्यक्ति मरता है और उसको जलाते हैं तो उस राख का वजन भी 2.5 किलो ही होता है। ऐसा मतलब फिलोसफिकल रीति से, तो हम क्या लाए थे क्या ले गए, फिलोसफिकली बोला जाता है। खैर, ये वायु की तरह हम हल्के रहना सीखे। आकाश का क्या गुण है? आकाश हमें विशालता सिखाता है, बेहद कम्युनिकेशन का साधन है। आज मोबाइल है, टीवी है, रेडियो है, जितने कम्युनिकेशन के साधन है सब आकाश में सैटेलाइट के कारण है। अगर सैटेलाइट आकाश में न छोड़े हुए हो वैज्ञानिकों ने, तो कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। और अंत में यही हमारी परीक्षा का साधन पड़ेंगे, यही सैटेलाइट काम नहीं करेंगे, न टीवी, न रेडियो, न मोबाइल, टेलीफोन, कुछ काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये कम। तो बाबा क्या सुनाता है, जैसे किसी से भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ऐसे ही आकाश की तरह अगर जितना हमारा विशाल हृदय होगा ना, तो हमारा किसी से कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन नहीं होगा कभी भी। होता क्या है, जिनसे हमारे संबंध अच्छे होते हैं उनसे तो हम बड़े प्रेम से मिलते हैं, जिनसे संबंध में थोड़ी कटुता होती है, सामने से भी आ रहा होता है, हम नजर बचा के रास्ता दूसरा लेके निकल जाते हैं, बात नहीं करते। तो कम्युनिकेशन, हम विश्व महाराजा, विश्व महारानी, जो चक्रवर्ती राजा तब ही बन सकते हैं अगर एक भी आत्मा से हमारे संबंधों में कटुता हुई, वो विश्व महाराजन कभी नहीं बन सकते। इसीलिए जिनसे अगर कटुता भी हो, उनसे हम ब्रेक डाउन करने की कोशिश करें संबंधों की कटुता का, आइस ब्रेकिंग करें और पहल लें। हाँ भाई, हेलो, चलो जो बीता सो बीता, अपनी तरफ से हम ओम शांति करें, गुड मॉर्निंग, भले दूसरा जवाब दे ना दे, लेकिन हमने प्रयास किया तो मेरे मार्क्स जमा हो गए। इसलिए आकाश की तरह ये विशालता अगर होगी, किसी की कमी कमजोरी को हम अपने अंदर धारण नहीं करेंगे। इसमें बड़ा अच्छा होता क्या है, कोई हम अपनी तरफ नहीं देखते, दूसरे की कमी कमजोरी हमें स्पष्ट दिखाई देती, अपनी नहीं दिखती। बड़ा अच्छा, कल परसों एक हो रहा था कॉन्फ्रेंस का, 2 लाइन बताई गई वहां पर कि जिंदगी भर एक ही भूल करते रहे, सुना होगा, जिंदगी भर एक ही भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करते रहे। आईना होता है ना मिरर, तो उसको अगर साफ करते रहेंगे, हम धूल चेहरे पर है, यानी प्रॉब्लम हमारे साथ है, आत्मा की कमजोरी है, लेकिन हम दूसरे को वो अनुभव करते हैं। खैर, और अंतिम तत्व कौन सा है, कौन सा रह गया, अग्नि। प्रकृति के अंदर अग्नि तत्व किस रूप में है, सूर्य के रूप में, वो अग्नि तत्व है। तो इसीलिए बाबा कहता है, एक तो ज्वालामुखी योग करो, वो आवश्यकता, और अग्नि में सबसे बड़ा गुण कौन सा होता है, वो हर एक चीज का रूप बदल देती है। तो अभी इसी की आवश्यकता है रूप बदलने की, जो बाबा ने कहा है कि अग्नि के व्यक्ति आएगा। बाबा के सम्मुख हम जाते थे, बहुत ये प्रश्न पूछेंगे ये, वहां जाके एकदम माइंड जो है जीरो हो जाता था, सब प्रश्न भूल जाते थे। बाबा ने कहा है, रोता हुआ आए आपके सम्मुख, आपका रूप देख करके अगर ज्वालामुखी रूप हमारा होगा, वो हंसता हुआ चला जाए, अशांत आत्मा आए शांति की स्थिति को धारण करके चली जाए, उसका स्वरूप बदल जाए। तो इस रीति से जगत जीत, मन जीते जगत जीत में, सबके साथ हमें ये प्रकृति जीत भी बना। और आप सब लोग सोचना, हर एक तत्व के 10-10 कम से कम गुण हैं, यहाँ तो एक समय के अभाव में बताया, आप देखना, और तभी हम सबका जो लक्ष्य है ना, बाबा समान मन जीते जगत जीत, वो बन करके हम सब भी बाबा के साथ चलेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
थैंक यू मोहन भाई, साकार बाबा के साथ की बातों को सबने बहुत एंजॉय किया है और मैं समझती हूँ प्रकृति के पांच तत्वों की फ्रेंडशिप भी आज ही से हम शुरू कर देंगे।
जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे।